एस्ट्रो लाइफ लेकर आए हैं आपके लिए
ग्रहों का खेल
विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जगजीत.
एवं दक्ष प्रबंधक के सिद्धांत. प्रबंधक यानी कि लीडर. किसी भी टीम को चलाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है और एक लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से टीम को अपने दल को वो आगे लेके जा सकता है, उनके बारे में बात करते हैं. प्रभावशाली एवं सफल होने के निश्चित के लिए निश्चित ही एक नेता को, एक प्रबंधक को अपने दल के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को अधिक से अधिक समझ लेना चाहिए. लक्ष्य बनाने वाले की तरह उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति के आदर्श को देखने एवं अपनाने में समर्थ होना चाहिए. उसको अपने दल एवं दल के सदस्यों द्वारा उनकी क्षमताओं के अनुसार प्राप्त की गई व्यवहारिक उपलब्धियों तथा की गई प्रगति को सहन करने एवं उनको बेहतर बनाने में समर्थ होना चाहिए. उसको आदर्श एवं यथार्थ के बीच हमेशा से मौजूद खाई को पाटने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. उसे यह समझ लेना चाहिए कि अपने अधीन सदस्यों एवं दल को दल के आदर्श एवं एथिक्स और उसके लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह एवं ईमानदारी से विस्तार पूर्वक बतलाना उसका मुख्य मिशन है. उसे अपने अधीन लोगों के साथ साथ समग्र दल एवं दल के सभी सदस्यों को इन लक्ष्यों की ओर बढ़ने में रचनात्मक रूप से एवं विश्वसनीय ढंग से उनका नेतृत्व करना चाहिए. उसके लिए संगठन को अपनाना और पूरी तरह से केवल संपूर्ण संगठन के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा. उसे कभी भी गुटबाजी नहीं करनी चाहिए और न ही किसी गुट का समर्थन करना चाहिए. उसे दल के सदस्यों के बारे में कोई भी निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर लेना चाहिए कि समस्त दल के लिए वे कितने महत्व रखते हैं. उसको अपनी योजनाओं, उनके कार्यान्वयन तथा अपनी न्याय निष्ठा में आवश्यकता पड़ने पर दल की भलाई के लिए किसी व्यक्ति का बलिदान देने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए. उसको सभी स्थापित कम्युनिकेशन लाइनों की रक्षा करनी चाहिए और जहां कहीं आवश्यक हो उनको पूरा करना चाहिए. प्रत्येक सदस्य को अपने नियंत्रण क्षेत्र में सभी लोगों के बीच एफिनिटी की सुरक्षा करनी चाहिए और उसे स्वयं भी पूरे दल के प्रति अपनी एफिनिटी को बनाए रखना चाहिए. उसको हमेशा ही उच्चतम रचनात्मक रियलिटी को हासिल करना चाहिए. उसकी योजनाएं दल के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं सारे दल की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में संपन्न होनी चाहिए. उनको कभी भी संगठनों को बेतरतीब नहीं बढ़ने देना चाहिए, बल्कि दल की अग्रगामी योजनाओं से सीखकर संगठनात्मक योजनाओं को नवीन एवं लचीला बनाए रखना चाहिए. बहुत ही खूबसूरत लिखा है और इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में जगजीत जी को भी शामिल करते हैं. जगजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
नमस्कार जी.
आज सबसे पहला हॉरोस्कोप आप हमारे साथ कौन सा शेयर करने वाले हैं?
जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 20th June 1970 और इनका जो क्वेश्चन है वो बिजनेस के विषय में है कि बिजनेस इस साल कुछ स्लो रहा है या करना, तो उस विषय में काफी कुछ जानना चाहा है. सबसे पहले मैंने होरोस्कोप के मुताबिक इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से इनके होरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति है उसे बताना चाहूंगा. इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं चंद्र की बात बोलूं तो चंद्र इनके होरोस्कोप में जिस भाव में है, एक तरफ तो उनके लिए जरूर अच्छा भाव है लेकिन दूसरी तरफ से उनके नेगेटिव प्रभाव भी जरूर मिलते हैं. जैसा कि इन्होंने बिजनेस के विषय में बोला, तो चंद्र की जो ये स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति का जहाँ पर जन्म होता है और जन्म से दूर कहीं भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है. इंसान बिजनेस में काफ़ी कामयाबी रहती है, अच्छा बिजनेसमैन रहता है. लेकिन चंद्र का जब राहु का प्रभाव आपस में रहता है तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आनी शुरू हो जाती है. मैंने सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इन्हें अपने मन में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और अपने बिजनेस के विषय में भी अच्छा सोचना चाहिए. अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिजनेस है ये जरूर अच्छा रहता है. कई बार ऐसा रहता है कि वर्षफल में या प्लैनेट्स कुछ उस वक्त अच्छे नहीं हैं तो वो एक छोटा सा जो टाइम पीरियड रहेगा, 8 महीने 9 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जो बिजनेस है वो इनके लिए जरूर अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों के योग ऐसे रहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए बिजनेस अच्छा नहीं रहता, भाई जॉब करनी चाहिए, लेकिन इन्हें तो मैं यही कहना चाहूंगा इन्हें हमेशा बिजनेस में ही रहना चाहिए और बिजनेस के विषय में अच्छा सोचना चाहिए। इवन कि अगर मैं इनके होरोस्कोप में शनि बृहस्पति की बात करूं, शनि चाहे जरूर डेबिलिटेट है लेकिन बृहस्पति के साथ ऐसे योग बना रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की जो एडवाइस रहती है दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी और बिजनेस के लिए भी, ऐसे व्यक्ति की जो एडवाइस है ये जरूर अच्छी रहती है। और मैंने सिर्फ ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी ये कभी बिजनेस, जैसे बिजनेस तो कर ही रहे हैं, जब भी कहीं नया बिजनेस भी और शुरू करना चाहेंगे या इसे बढ़ाना भी चाहेंगे तो इन्हें पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। कई बार मन में ऐसी नेगेटिविटी आ जाएगी, भाई अगर मैं इस बिजनेस को बढ़ाऊंगा मेरे को और धन की जरूरत पड़ेगी या मैं किसी पार्टनर को बीच में शामिल कर लेता हूं, तो जहां कहीं ना कहीं कोई पार्टनर रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस स्लो हो जाए या पार्टनर से डिफरेंस ओपिनियन हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट जरूर हो सकती हैं। तो मैंने यही कहना चाहूंगा जब भी बिजनेस रहे तो पार्टनरशिप में कभी भी कोई बिजनेस इन्हें नहीं करना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बिजनेस बोला कि स्लो है तो मैंने यही कहना चाहूंगा ये 4 महीने का लगभग जून तक का जो टाइम पीरियड है वो बिजनेस के लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि इस बार जुपिटर और केतु की जो स्थिति ऐसी आ रही है कि कारण ये बनेगा कि ये किसी ना किसी की जो मदद है वो अपने हिसाब से कुछ ज्यादा कर जाएंगे और वहीं से इनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा कि अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनकी मदद में निकल गया या बिजनेस से जो धन कमाया उसको उनकी मदद पे लगा दिया और अब बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता है तो वहां से वापस नहीं मिल रहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो क्रिएट हो सकती हैं जिससे कि बिजनेस में कोई ना कोई जो दिक्कत है ये आ सकती है। तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि अब के बाद इन्हें जून तक किसी का कोई ज्यादा भला नहीं करना चाहिए और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु की जब स्थिति ऐसी होती है तो इंसान कहीं ना कहीं हेल्थ से भी दबना शुरू हो जाता है। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी ये धर्म स्थान पर जाते हैं वहां अपने लिए भगवान से अच्छे की प्रार्थना करें, अच्छी हेल्थ की प्रार्थना करें और अगर हो सके वहां उड़द की जो दाल रहती है उसका दान करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और मैंने फिर से यही कहना चाहूंगा कि इन्हें एक तो अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए और दूसरा किसी की ज्यादा मदद नहीं करनी चाहिए और तीसरा इन्हें जो भी बिजनेस है उसके लिए पार्टनरशिप कभी नहीं सोचनी चाहिए। ओवरऑल इनको आगे चलकर भी जो बिजनेस है ये अच्छा ही रहेगा। जी
जी जगजीत जी, और आपका जो नंबर है आपसे उस नंबर पे बात की जा सकती है, आपसे अपॉइंटमेंट बना ही जा सकती है। तो शेयर करते हैं अपने लिसनर्स के साथ, 09278758 आपका लैंडलाइन है। आपकी वेबसाइट का पता है www.astrologerjagjeet.com और मोबाइल पर भी आपको टेक्स्ट किया जा सकता है या बात की जा सकती है, जिसका नंबर है 02103901133।
दुख में न को दुख के सब साथ दुख में ना को
अच्छा गीत सुख के सब साथी दुख में ना कोई। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रही थी आपके साथ कि एक टीम लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। थोड़ा और बात करते हैं उसके ऊपर। एक जो अच्छा लीडर होता है उसे खुद को ये अवसर देना चाहिए कि उसकी अपनी जरूरतों के मुताबिक अच्छी देखभाल की जा सके और उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक प्रयास ना करने पड़े, और वह अपनी विवेकशीलता को ऊंचा बनाए रखकर सुख सुविधाओं का यथोचित लाभ उठा सके। उसे अपने अधीन सदस्यों को यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे प्रबंधन के अपने अपने क्षेत्र में उसकी सच्ची भावनाओं और उसके निर्णयों के आधार को पूरी तरह एवं यथोचित रूप से प्रसारित करें और विस्तार पूर्वक उनकी व्याख्या इस ढंग से करें जिससे कि उन अधीन सदस्यों को नियंत्रण में काम करने वाले दूसरे सदस्य भी उन्हें भली भांति समझ सके। उसको स्वयं दल के आदर्शों एवं एथिक्स के किसी भी भाग का दुरुपयोग करने अथवा छुपाने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी इन्हें पुराना होकर निरर्थक होने देना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि अधीनस्थ सदस्य उसकी योजनाओं को कभी विकृत ना कर सके और ना ही उनमें कोई कांट छांट की जा सके। उसे अपने दल के किसी भी सदस्य के आदर्श एवं नैतिकता को गिरने नहीं देना चाहिए और उसे बनाए रखने के लिए उसे सदैव विवेक का सहारा लेना चाहिए। उसको लक्ष्यों में विश्वास रखना चाहिए, स्वयं में विश्वास रखना चाहिए एवं दल में विश्वास रखना चाहिए। उसे हमेशा रचनात्मक एवं सृजनात्मक उपलक्ष्यों का प्रदर्शन करते हुए नेतृत्व करना चाहिए। उसे अपना कोई भी कार्य आशंकाओं एवं डर से बाध्य होकर नहीं करना चाहिए। उसको लीडर को यह भी बात समझनी चाहिए कि टीम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी स्तर पर दूसरे व्यक्तियों जीवन एवं भौतिक जगत की प्रबंध व्यवस्था में लगा हुआ है। ऐसे प्रत्येक एवं प्रबंधक को इसी आचार संहिता के अंदर प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वयं इस प्रकार का आचरण करते हुए कोई भी लीडर, कोई भी नेता अपने टीम के लिए एक साम्राज्य जीत सकता है और वह साम्राज्य कुछ भी हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत विचार। और जगजीत जी के साथ दोबारा से शामिल होते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जगजीत जी, अभी आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं हमारे सेगमेंट में?
जी हाँ, जैसे कि अभी तुला यानी कि लिब्रा जो स्टार साइन है उस विषय में लिसनर्स ने जानना चाहा है।
जी,
अगर हम तुला की या लिब्रा की बात करते हैं तो होरोस्कोप में जो वीनस है शुक्र, वो इस राशि के जो स्वामी है। अगर मैं वीनस की बात करता हूँ, वीनस बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं होरोस्कोप में। जैसे कि वीनस की अगर मैं बात करूं तो जो शुक्र हैं वो हस्बैंड के होरोस्कोप में वाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र जो हैं वो इस लाइफ के कंफर्ट हैं। जितने भी हम अपने लाइफ में कंफर्ट्स देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये भी वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कुंडली मिलान किया जाता है, जैसे मंगल की स्थिति देखी जाती है तो वैसे ही शुक्र की जो स्थिति है ये भी देखी जाती है। और कई बार देखने में आया कि अगर शुक्र किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट रहता है या मित्र ग्रह से दृष्ट नहीं रहता तो उस वक्त भी कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड जो रोग है ये देखा गया है। अगर मैं बात करूं इस स्टार साइन की तो इस स्टार साइन के जितने लोग या जातक हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले जो घर की औरतें हैं या लेडीज़ हैं उनकी जरूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो बिजनेस में है या जो कहीं भी जो लेडीज़ हैं अगर वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा स्त्री का जो सम्मान करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया कि इंसान को अगर जॉब में प्रॉब्लम या बिजनेस में प्रॉब्लम कहीं रहती है तो उस वक्त अगर वाइफ की एडवाइस से कोई कार्य किया जाए तो वो भी जो है अच्छा माना जाता है। और इस राशि के जातक कई बार घर के मुखिया रहते हैं और कोई घर बनाना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सभी चीज़ें जो वास्तु है उसके हिसाब से नहीं रख पाते, तो उस वक्त अगर घर की जो नींव है या फाउंडेशन है वहाँ थोड़ा सा हनी और एक चांदी का स्क्वायर पीस रखा जाए तो ये भी माना जाता है कि उससे जो वास्तु दोष रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका निवारण है जरूर मिलता है। और इस राशि के जातक का जो दान उत्तम माना जाता है कि अगर कभी भी धर्म स्थान पर जाते हैं वहाँ किचन में जो बर्तन यूज़ होते हैं उन चीज़ों का दान अगर धर्म स्थान पर करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और इस राशि के जातकों को ये चाहिए कि ससुराल से अगर कांसे का कोई भी बर्तन गिफ्ट के रूप में लेकर घर पर स्थापित करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे होरोस्कोप में मंगल का दोष रहता है या शुक्र राहु के साथ योग बना रहा है तो उस वक्त मैरिज में भी लड़कियों की कई बार जो प्रॉब्लम्स है ये देखी गई है। अगर हस्बैंड का होरोस्कोप कई बार रहता है उसमें अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं रहती, शुक्र क्रूर ग्रहों से दृष्ट रहता है तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है कि वाइफ के साथ कहीं ना कहीं डिफरेंस ओपिनियन जरूर रहते हैं। अगर उस वक्त धर्म स्थान पर जाकर अपने अच्छे के लिए प्रार्थना की जाए और वहाँ पर जैसे कि दही, कपूर, येलो मस्टर्ड सीड इन चीज़ों का धर्म स्थान पर अगर जाकर दान किया जाता है तो उस वक्त ये जरूर अच्छा समझा जाता है।
जी जगजीत जी, आपसे और भी बातें करते हैं मगर लिसनर्स के साथ आपकी डिटेल एक बार फिर से शेयर करेंगे ताकि वो जब भी चाहें आपको इजी वे से आपके साथ कांटेक्ट बना सकें और आपको अपना जो भी है हॉरोस्कोप की डिटेल भेज सकें और हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उनको शामिल कर सकें। आपका लैंडलाइन है 09278758 और मोबाइल है 02103901113 एंड ईमेल का पता है info@astrologerjagjeet.com।
की है ये माया कर्मों के खेल सारे कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे क्या क्या जब नजारे क्या क्या जब नजारे कर्मों की है ये माया कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की कर्मों से ही बने हैं इंसान जहां में आता इंसान जहां में आता कर्मों के ही सहारे कर्मों के ही सहारे कर्मों के ही सहारे कर्मों के ही सहारे कर्मों की है ये माया कोई राजा कोई भिक्षुक सब कर्म के तमाशे कोई राजा कोई भिक्षुक महलों में रहता कोई महलों में रहता कोई कोई फिरते मारे मारे कोई फिरते मारे मारे कोई फिरते मारे मारे कोई फिरते मारे मारे कर्मों की है ये माया कोई संत कोई डाकू कोई छीने कोई बाटे कोई संत कोई डाकू कोई जीते सारी दुनिया कोई जीते सारी दुनिया और कोई सबसे हारे और कोई सबसे हारे और कोई सबसे हारे और कोई सबसे हारे कर्मों की है ये माया मजदूर देखो भूखा कोई बिन करे ही खाए मजदूर देखो भूखा कोई रोशनी को तरसे कोई रोशनी को तरसे कोई लूटता नजारे कोई लूटता नजारे कोई लूटता नजारे कोई लूटता नजारे कर्मों की है ये माया सब कर्म की है माया अब तक कोई न जाना सब कर्म की है माया तुम कर्म ऐसे करना तुम कर्म ऐसे करना देवे सभी दुआएं देवे सभी दुआएं देवे सभी दुआएं देवे सभी दुआएं कर्मों की है ये माया
किसी को भी सदस्य को यह मांग करने का अधिकार है कि दल के आदर्श तर्काधार और एथिक्स उच्चतम स्तर के होने चाहिए और उन्हें बनाए रखने के लिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। एक आदर्श दल का उत्तरदायित्व होता है कि अपने प्रत्येक सदस्य की आजीविका और उनके भावी पीढ़ियों के लिए अवसर सुनिश्चित करें। दल के सदस्यों को दल के अंदर अपने तकनीकी क्षेत्र में जितना संभव हो सके विशेषज्ञता एवं कुशलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और दल के अन्य सदस्यों को उस तकनीक एवं दक्षता को समझने तथा दल की संगठनात्मक आवश्यकताओं में उसके महत्व को पहचानने में उनकी मदद करनी चाहिए। दल के सदस्यों को दल के अंदर सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी एवं दक्षताओं की व्यवहारिक जानकारी रखनी चाहिए जिससे कि वे उनको दल की संगठनात्मक आवश्यकताओं में उनके महत्व को समझ सके। दल में उच्च स्तरीय ARC दल के सदस्य पर निर्भर करती है। उसको उच्च स्तरीय कम्युनिकेशन लाइंस एवं स्पष्ट एफिनिटी तथा रियलिटी पर जोर देना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे उच्च स्तरीय पारस्परिक संबंध ना होने के क्या परिणाम होंगे। उसको संगठन के अंदर ARC का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए निरंतर और सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत विचार है कि एक टीम को किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और टीम लीडर को भी उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या एथिक्स क्या क्या प्लानिंग्स जो हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऑलमोस्ट जगजीत जी हमारा वक्त हो गया है कि हम अपने प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेकर जाएं, मगर हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट हॉरोस्कोप्स आते हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि आप आने वाले प्रोग्राम्स में उनको शामिल कर सकें।
देखिए, जब भी डिटेल दी जाती है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन रहना चाहिए और उसके साथ जो वो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए। कई बार बिजनेस होता है तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे योग रहते हैं कि किसी इंसान के लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है या ये बिजनेस अगर वो जॉब करना चाहते तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और जब भी समय मेंशन करते हैं तो उस वक्त जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ रहता है तो उसमें जो टाइम ऑफ बर्थ रहता है तो उसमें AM या PM जो भी है वो मेंशन रहना चाहिए और जो प्लेस ऑफ बर्थ है किस कंट्री में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए जिससे कि होरोस्कोप बनाकर उनके जो जवाब हैं उनको दिया जा सके क्वेश्चन को।
जी जगजीत जी, और प्रोग्राम को समाप्ति करते हैं मगर इस वादे के साथ कि अपने लिसनर्स के साथ अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
नमस्कार जी।
planetaudio.org.nz/ग्राहों का खेल।